ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको प्रभु मिलन की और मधुवन में आगमन की और शक्तियों से सुसज्जित होने की आप सबको बहुत 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 बधाई हो, बहुत बधाइयां हो। पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भर गए हैं ना, सब संपन्न हो गए हैं, सब संपन्न है, जरा हाथ उठा के बताएं। हाँ जी, बहुत खूब बधाइयां। संगम युग का हर पल, हर दिन, हर क्षण हमें शक्तियों से, गुणों से, उपलब्धियों से, प्राप्तियों से संपन्न करता है। हम सबका जीवन सारे विश्व के लिए उदाहरण स्वरूप बन रहा है। हम वो हैं इस विश्व नाटक के मुख्य पात्रधारी, जिनको सारा संसार फॉलो करता है। हम इस विश्व रंगमंच पर सबसे उम्दा, सबसे उत्तम प्रस्तुति करने वाले कलाकार हैं। हम सबके लिए एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। आप सब जानते हैं, बाबा ने कई बार इस बात पर ध्यान खिंचाया है कि आप ब्राह्मणों का एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। साथियों, संगम युग के एक एक पल को सफल करना यानी कि अपना कल्प कल्प के लिए भाग्य जमा कर लेना है। अमृत वेले को महत्व हम देंगे, लेकिन पहले संगम युग के महत्व को समझ लें। और ये समय का महत्व हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है। दुनिया में भी समय की वैल्यू को जो बताते हैं तो कहते हैं कि एक साल की कीमत उस बच्चे से पूछो जो एक नंबर से फेल हो गया हो, पूरा दूसरा साल भी उसको पढ़ना पड़ता है एक नंबर से फेल होने के कारण। देखिए कितना वैल्यूबल है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा अगर वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके पूरे वर्ष उसको दोबारा मेहनत करना पड़ता है। एक मास की कीमत पूछनी है तो उस बच्चे से जिसका जन्म पहले हो गया हो और सारा जीवन अपाहिज होता है, उससे वैल्यू से पूछो कि कितना वैल्यू है एक मास की। एक सप्ताह की कीमत पूछनी है तो उस मैगजीन के एडिटर से पूछो जो साप्ताहिक मैगजीन निकालता है और उसका पूरा ना हुआ हो, वो क्या करेगा, कल कैसे निकालना, उससे पूछिए क्या होता है। एक दिन की कीमत पूछनी है तो उस तिहाड़ी के मजदूर से पूछो जो बेचारा कमाता है, दिन भर तो खाना मिलता है उसको और आज बीमार है, वो कुछ भी नहीं कमा पाया है। एक दिन की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो। एक मिनट की कीमत उससे पूछो जो फर्स्ट क्लास एसी में अपना रिजर्वेशन कराया हो, जैसे पहुंचे एक मिनट पहले गाड़ी चली जाए। और एक सेकंड की कीमत पूछिए, एक घंटे की कीमत पूछिए, तो उसे पूछिए जो इंटरव्यू देने के लिए गया हो और एक घंटे से चूक गया हो और उसका रह जाता है। एक मिनट की कीमत पूछनी है तो ट्रेन से रिजर्वेशन वाले, एक सेकंड की कीमत पूछनी हो, एक सेकंड की कीमत पूछी हो जो चल रहा हो और सामने से कोई गाड़ी आए और एक सेकंड में उसका प्राण बच जाए, एक्सीडेंट होने से बच जाए, उससे पूछो। और एक सेकंड के दसवें भाग की कीमत उससे पूछो जो ओलंपिक का खिलाड़ी हो, जो गोल्ड मेडल से चूक गया हो, सारा जीवन, सारा साल भर उसने मेहनत किया हो लेकिन एक सेकंड के दसवें भाग से वो गोल्ड मेडल से चूक गया हो। प्यारे साथियों, ये तो चूक जाने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन संगम युग में जो चूक गया वो कभी भी नहीं पहुंच सकता है वापस। हम सबके लिए संगम युग बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल है। जो जितना ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं वो समय की वैल्यू को देख करके। हमें इस मौके पर याद आता है हमारे आदरणीय जगदीश भाई, बहुत अच्छा उदाहरण है उनका हमारे सामने। उन्होंने कहा, अपने अंतिम संबोधन में कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने जीवन का एक एक पल, एक एक सेकंड सफल किया। और समय तो इतनी रफ्तार से भागा जाता है, समय की तो पहिया रुकता ही नहीं। इसलिए समय को बहुत वैल्यू देना है, बहुत वैल्यूबल है संगम युग का। यदि सचमुच हमको अपने जीवन का, अपने भाग्य का इतना नशा है कि हम बड़े भाग्यवान हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, तो हमें समय को वैल्यू देना होगा। फिर अमृत वेला ही क्यों, सारा जो वेला है, चाहे सांझ वेला हो, चाहे प्रातर वेला हो, कोई भी हो, सबके लिए तैयार होना है। अमृत वेला शक्तिशाली बनाए, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहला। आंख खुलती है, सुबह होती है, हम उस समय अपने आप को इतना तरोताजा कर लें। अमृत वेला को अगर आपने सफल कर लिया तो ये आपके दिनचर्या का फाउंडेशन है। अमृत वेला, जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, जहां तक सुन रहे हैं, हम सब ब्राह्मणों के लिए बाबा ने पूरी जो भी अमृत वेला के ऊपर वाणी चलाई है उनका एक संग्रह है किताब। उस अमृत वेला को पढ़िए, आपको मालूम पड़े कि अमृत वेला कितना महत्वपूर्ण है हम सब ब्राह्मणों के लिए। स्वयं बाबा हमारा ध्यान इस ओर खिंचाया करते हैं। यही केवल समय होता है जब भगवान के साथ हमारी मुलाकात होती है। भगवान ने अपॉइंटमेंट दिया है हमें केवल सवेरे और सवेरे। बाबा कहते हैं उसके बाद तो मैं भक्तों के पास चला जाता हूं और सब दूसरी सेवाओं में लग जाता हूं, लेकिन आपके लिए, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी सुनाना हो, जो भी कहना हो, मैं उपस्थित हूं, आओ मेरे साथ बैठो। और मेरा अपना सौभाग्य रहा है कि मैं संगम युग में अपने ब्राह्मण जीवन में ये पक्का कर लिया है कि यदि हमें कुछ करना है तो अपने कुछ सिद्धांतों पर, नियमों पर, अपने जीवन को एक अच्छा आदर्श आधार देना है। मैंने निश्चय कर लिया मधुबन में आए तभी कि मधुबन निवासी बनने का मतलब है मधुबन की दिनचर्या को पूरा फॉलो करना। हालांकि कभी कभी देर हो जाती है, रात को भी, कभी कभी रात को भी सफर में भी है, लेकिन लक्ष्य बनाया है कि 4 से 4:45 बजे का समय, ये भगवान की श्रीमत है, उसने कहा है, मुझे कभी मिस नहीं करना है। इसलिए दादियों ने, बड़े भाई बहनों ने, उन्होंने बहुत अच्छी हमको इसमें प्रशस्ति दी है। मैं अनुभव करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेता हूं और आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि प्यारे साथियों, यदि ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े हो, यदि कुछ करना है, यदि अपने आप को जान गए हो, यदि भगवान को पहचान गए हो, संगम युग के समय को पहचान गए हो, इसके वैल्यू को, इसके महत्व को जान गए हो, तो साथियों आज संकल्प करो, क्योंकि बिना दृढ़ता के सफलता संभव नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता की तीली से कमजोरी के रावण को भस्म करो। करो तो करो पक्का, बनकर चिराग आ ही गए हो तो दोस्तों, बनकर चिराग आ ही गए हो तो दोस्तों, हवा से लड़ने का भौंसला रखो, हवा से लड़ने का भौंसला रखो। जितना हम अपने नियमों में, सिद्धांतों में, आदर्शों में, ईश्वरीय नियमों में, मर्यादाओं में जितना हम अपने आप को बांध लेते हैं, उतना हम शक्तिशाली बन जाते हैं। शक्तिशाली अमृत वेला के लिए बहुत जरूरी है हमारी दिनचर्या, हमारी स्मृति का शक्तिशाली होना। जिसकी स्मृति शक्तिशाली हो गई, जिसकी स्थिति शक्तिशाली हो गई, जिसकी दिनचर्या शक्तिशाली हो गई, उसका अमृत वेला शक्तिशाली हो ही जाएगा। कोई ये कहे कि हम दिनचर्या में कैसा भी रह लें, हम कैसे भी करते हैं, केवल अमृत वेले बैठ जाए और भगवान से सारा प्यार ले लें, संभव नहीं। इसलिए अमृत वेला को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी शक्तिशाली स्मृति रहे, शक्तिशाली स्थिति रहे। जिसको अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है वो रात को और अपनी दिनचर्या में भी कुछ इस तरह के काम न करें जो उनके मन को खाता हो, जो मन को कचोटता है, कहीं पर हमारी कुछ गलतियों के कारण किसी को दुख पहुंचता है, हमारे कुछ भी विकर्मों के कारण हमारे ऊपर बोझ ज्यादा है, वो कहे कि अमृत बेला बैठ के मैं ट्रिक बता दूं आपको, कुछ टिप्स दे दूं, आप अमृत बेला योग अच्छा कर लें, संभव नहीं। इसलिए शक्तिशाली अमृत वेला, शक्तिशाली दिनचर्या चाहिए। जो दिनचर्या में सरल हैं, जो सरस हैं, जिनमें पॉजिटिव थिंकिंग का सकारात्मक विधायक चिंतन करते हैं, जो सबके लिए शुभ सोचते हैं, जो सबको सम्मान देते हैं, जो सबसे अच्छे मधुर संबंध बना के रखते हैं, जो सब बड़े विनम्र होते हैं, जो सहज स्वभावी हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, जो परमात्मा से प्यार रखते हैं, जो सबको प्यार करते हैं, वो परमात्मा को भी प्यारे होते हैं। इसलिए बंदों से नफरत करते हो और खुदा से प्यार, बंदों से नफरत करते हो और खुदा से प्यार, ऐसे प्यार से खुदा भी करता है इनकार, ऐसे प्यार से खुदा भी करता है इनकार। बाबा यही कहते हैं, तो मुझे बहुत प्यार करना चाहते हो तो पूरे ईश्वरीय परिवार को प्यार करो। जो परिवार से कहीं जमता नहीं उसका, वो कितना भी कर ले भगवान का प्यार मिल जाए संभव नहीं है। इसलिए दिनचर्या एक शक्तिशाली बनाए। साथियों, आप सब संकल्प लेंगे हाथ उठा के मेरे साथ कि संगम युग अमृत वेला है, और अमृत वेले को भी हम हर रोज अपनी पूरी कोशिश के साथ, दृढ़ता के साथ हम संपन्न करेंगे, सफल करेंगे। बाबा की ये पहली श्रीमत जरूर पालन करेंगे। अगर ऐसा है तो हाथ उठाओ। करेंगे? डर डर के नहीं कर रहे, डर डर कर रहे हैं कि पता नहीं, हमारे तो बहुत मिस होता है। हाँ, लंबा हाथ उठाए, हाँ लंबा करें, थोड़ी ताकत लगाने, ठंडी तो नहीं हो रही ना? है ना, ठीक है, बहुत अच्छा है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन कर लें अपने। हम बाबा को अपने प्रेम का सबूत उसकी पहली श्रीमत से शुरू करते हैं। हमारी आदरणीय दादी जी, अभी तक हमने देखा कुछ समय पहले तक कि कैसी भी होती थी, रात को सोती नहीं भी थी, नींद ना भी आए तो दादी यहां बैठ के योग करा रही है। दादी डायमंड हॉल में योग करा रही है। दुबई में मैंने देखा दादी को, दादी वहां योग करा रही है। जहां कहीं भी जाती थी अमृत वेला योग कराती थी। दादी का संकल्प है कि सब कोई जहां बैठे सामूहिक रूप से बैठ करें। दादी संकल्प करती है कि मैं दिल्ली में 1,00,000 लोगों के बीच में मैं सवेरे योग भी कराऊं और मुरली भी सुनाऊं। दादी के संकल्प होता है कि बाबा के बच्चे अमृत वेला सब मिलके करें। जो सेवा केंद्र नजदीक के भाई बहनों को भी निमंत्रित करके अमृत वेला बहने खुद बैठ के योग लगा के अच्छी तरह से विधिवत अपनी दिनचर्या का आरंभ करें, और सवेरे अंतर मन में और पूरे संगठन के साथ शक्तिशाली योग करें। मैं कहता हूं कि विनाश को समीप लाने में, नई दुनिया को समीप लाने में सबसे बड़ा सहयोग होगा, सबसे बड़ा सहयोग होगा। इसलिए हमारी बहनों को भी, भाइयों को भी साधारण न समझे, चलो कमरे में बैठ गए, उठ लिए, कहीं कोने में बैठ लिए, कुछ थोड़ा सो लिए, थोड़ा जाग लिए, ये निद्रा वाला योग नहीं, ये निद्रा योग नहीं, या योग में निद्रा करना वो भी ठीक नहीं। इसको चाहिए शक्तिशाली योग। और मैं अपने सभी भाई बहनों को ये कहूंगा कि बाबा के साथ जिनको प्राप्तियों का अनुभव होता है और जिनको नहीं होता है वो नोट करें। एक विषय देता हूं, मुझे भगवान से क्या क्या मिला है, अपनी प्राप्तियों को देखें, नोट करें। जो प्राप्तियों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, महसूस करते हैं कि मुझे क्या मिला है, उनको पॉइंट देने की जरूरत नहीं है कि अमृत बेला योग में क्या करना है। वो स्मरण में रहे, स्मृति में रहे। मैं ऊपर पांडव भवन में रहता हूं, अमृत बेला रोज योग कराता हूं मेडिटेशन हॉल में, लगभग कई साल हो गए। बाबा की सीट पे बैठा हूं, सबसे ऊंची, संसार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचे देश, सबसे ऊंची जगह, सबसे ऊंचे स्थान, और वो भी पांडव सबसे ऊंची चोटी पर, वहां बैठ के उस स्थान पे बैठा हूं। एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, एक भी कहीं बुद्धि भटके, एक सेकंड के लिए भी कहीं भटकना नहीं चाहिए। इतना अटेंशन होता है सामने, और इस कारण जीवन का आनंद आ रहा है। ये जो गीत बताते हैं 5,000 6,000, ये तो गिनती की थोड़ी बताया जाता है, लेकिन हर बार पूरे भरे। मुझे तो ऐसा मन करता है कि हमको जो भी मिला है, जो बाबा ने दिया है, जो दादियों ने दिया है, वरिष्ठ भाई बहनों ने दिया है, जो दैवी परिवार ने दिया है, जो कुछ भी मुझे मिला है, मैं इसको सबको बांट दूं, भरा हूं खुशियों से, आनंद से, और इस आनंद के अतिरेकता के साथ, इसके उत्कर्ष के साथ, इस आनंदमय स्थिति के साथ हमारे हृदय में होता है कि ये जो प्यार मिली, जो पालना मिली, जो स्नेह मिला, इस स्नेह को मैं सबको बांट दूं। तनिक भी कोई रह न जाए, आंखों से बांटूं, बोल के बांटूं, गा के बांटूं, नाच के बांटूं, कुछ खिला पिला के बांटूं, कुछ लिखूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मैं आपसे आपको दे सकूं। आज मधुबन से आप सब संकल्प लेकर के चले, एक नई ऊर्जा के साथ, एक दृढ़तापूर्ण संकल्प के साथ, वही कि करना है, मुझे करना है, मुझे उदाहरण मूर्त बनना है, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनना है। देखें ऊपर से बाबा से शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। शक्तिशाली अमृत वेला के लिए मैं आपको कुछ युक्तियां बता रहा हूं, सहज सरल युक्तियां। हर रोज हम सवेरे आंख खुलती है तो हम अपने को तैयार करें। सवेरे उठते ही सबसे पहले जो हमारा बीज संकल्प है, जो मुख्य संकल्प है, शुरुआत के 5 मिनट वो बड़े शक्तिशाली होने चाहिए। अगर उस समय पर आपने साधारण संकल्पों से अपनी दिनचर्या का आरंभ किया तो घोड़े की तरह, अगर उसको घोड़ा निकल गया सवेरे सवेरे तो उसके पीछे आप सारा दिन दौड़ते रहेंगे और फिर घोड़े को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर सवेरे उठते ही पहला संकल्प ले लीजिए उसको कि आओ मेरे मन आज प्रभु मिलन कर लो, साथ में बिठा दो, बात करो, जैसे छोटा बच्चा हो उसको बिठाओ, देखो बेटा देखो, सामने देखो, बाबा को देखो। उठते ही पहली हमारी दृष्टि बाबा के ऊपर पड़नी चाहिए। रोज सवेरे आंख खुलती है, होता है ना, रोज जगते तो हैं, तो पहले हमारी दृष्टि कोई देहधारी पर न पड़े, कोई वस्तु पर भी ना हो, लक्ष्य हो कि मुझे देखना है, तो अभी आंखों से पहले पहले प्रथम दर्शन प्रभु दर्शन देखना है, तो प्यारे बाबा को देखना है। और बाबा को देखते ही अपने को तैयार करें संकल्प के साथ कि बाबा को नमस्ते करें। सुबह सुबह उठो यही कहते कहते, ओ मेरे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। आज का दिन उपहार मिला, आओ नया इतिहास लिखें, धरती पे मेरा अवतार हुआ, सुख से भरा संसार रचें, खुशियों के तोहफे दें बन के फरिश्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ मेरे बाबा नमस्ते नमस्ते। सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो गीत बजा अमृत वेला, ये सब अनुभवों से निकले हैं। जब देखा, मैंने अनुभव जो कर रहा हूं किरणों के नीचे बैठ के, तो इन गीतों की उसी श्रृंखला में इन गीतों की रचना हुई है। ढेर सारे इस तरह के हैं, उन अनुभवों को पिरोने की कोशिश करता हूं। भेकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे पलकें उठा के निहारा करूं, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुझको बिठा कर मिलन में मनाया करूं। कभी तन में आऊं कभी तन से जाऊं, जाऊं वतन या वतन को ही लाऊं, ये मिलन जाओ तन। तो पहला संकल्प ये हो कि सामने बाबा को देखें और पूरा दृश्य निर्माण कर लें। प्राय भाई बहने क्या करते हैं, योग में बैठते हैं तो परम धाम जाने की कोशिश करते हैं, और परम धाम जाने के लिए काफी ऊर्जा चाहिए, काफी ऊर्जा चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे भाई बहनों को स्ट्रगल करते हुए परम धाम पहुंचते नहीं, सारी मेहनत परम धाम जाने में ही लगा देते हैं, और वहां तक पहुंचे नहीं कि वापस जल्दी चले जाते हैं, मुश्किल से कोई पहुंचते हैं, और पहुंचते भी हैं तो वहां कितना देर ठहरते हैं जरा ये तो देखें, वो तो हमारा घर है, वहां तो ज्यादा रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं, ऐसा अनुभव करें आंख खुली तो रात को मैं बाबा की गोद में सो गई, रात को सो गया, बाबा के पास गया सूक्ष्मतन में, बाबा की गोद में सो गया, और सवेरे जब उठता हूं तो अपने कमरे को क्या महसूस करें कि ये कमरा नहीं है, मैं वतन में बैठा हूं, और जो भी सारा कमरा है, जो सब कुछ है, सामग्री जो कुछ भी है, उसको नीचे भेज दो, जैसे कि धरती चला गया, नीचे चला गया, एक लिफ्ट में मुझे, मैं आ गया हूं वतन में, बाबा सामने है वतन में, किरणों के नीचे बैठा हूं, बाबा को सामने देख रहा हूं, और बाबा के प्यार में मस्त हो गया। वतन में मत जाइए, वतन को ही यहां लाइए, ये आपको बहुत मदद करेगा। अनुभव कीजिए कि मैं वतन में आ गया हूं, और सबको बाकी नीचे भेज दो, जिसे एक लिफ्ट में मैंने सबको भेज दिया, लिफ्ट नीचे चलेगी बहुत दूर, जहां देह और देह की दुनिया नीचे ही है, मैं तो वतन में हूं। ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, हाँ, ये अभ्यास कीजिए। और योग में बहुत ज्यादा परमधाम तक मत जाइए, परमधाम को ही आ जाइए, बुला लीजिए, इसमें बड़ा आनंद आएगा। तो पहली बात बाबा को आंख खुलते ही बाबा को नमस्ते कर लें, वतन में बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, और एक बार नहीं दो चार बार कर लें। किसी को बार बार नमस्ते नहीं किया जाता है, लेकिन हम अपने को नमस्ते जगा करके नमस्ते कर रहे हैं। एक तो निद्रा में ही, प्रथम निद्रा में ही होता है नमस्ते बाबा, पता नहीं कब कर लिया है, किया भी कि नहीं किया। फिर उसके बाद थोड़ा जागे, अच्छा नमस्ते बाबा, फिर आंख खुलती, अब नमस्ते बाबा, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते। ये है आपके क्रम, है ना। तो अपने को जागृत करके किसी को प्यार करेंगे, अगर अलसाई आंखों से नमस्ते करेंगे तो कहेगा ये क्या नमस्ते कर रहा है बताओ, है ना। और किससे नमस्ते कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, हाँ अपने परम प्रियतम जो बहुत दिनों के बाद मिला है हमको, 5000 वर्ष के बाद मिला है, और अभी मिल लूं फिर पता नहीं कब मिलना हो, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। सवेरे सवेरे उठते ही बाबा को थैंक्स दें, मैं महान आत्मा हूं, स्वयं को एक संकल्प से अपने को श्रृंगार कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं महान हूं, मैं पुरानी दुनिया में मेहमान हूं। और अपने स्वमान को शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्प कीजिए, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, गगन से धरती पर उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुओर है बिखरा, मैं परम धाम से पधारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं धरा पर महान हूं, मैं धरा पर महान हूं, मैं जहां में मेहमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, और मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। ज्ञान योग के रंग मिले, उमंग उत्साह के पंख मिले, मुझे सत्य के संग मिले, सद्गुणों से गया संवारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। लेके चलना सुख धाम है, सुख देना ही काम है, मेरा सुखदेव नाम है, सारे जहां का मैं सहारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमक। ये समान, अपने को समान से श्रृंगार करें, भगवान हमको क्या देखता है कितनी ऊंची नजरों से, और हम अपने आप को कैसे देखते हैं। इस श्रेष्ठ समान के साथ अपनी दिनचर्या का आरंभ करें, जितनी शक्तिशाली संकल्प से दिनचर्या कर, फिर उसके बाद बाबा को नमस्ते करने के बाद अपने स्वमान में रहें, और चारपाई से उतरते हुए यह अनुभव करें कि मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं, मेरा अवतरण हो रहा है धरती पर, धरती मां को कहें धरती माता तुम्हारे कष्ट के दिन नष्ट हुए, अब मेरा अवतार हो रहा है, मैं अवतरित हुआ हूं। और अपनी दिनचर्या को पूरा ये देखें, पहली दिनचर्या में जिस आप बाबा को नमस्ते करते हैं तो बाबा को देखें, बाबा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाबा नमस्ते स्वीकार कर रहे हैं, और बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा ने पकड़ा आपको, उठाया, खड़ा किया, और आपको बड़ा श्रृंगार किया, बड़ा पोंछा ऊंचा किया, आपको पोंछ लिया, सहलाया, और उसके बाद यहां से तिलक लगाया, तिलक दे दिया मस्तक पर, और तिलक देने के बाद बाबा ने ताज भी दे दिया आपको, लो वाह मेरा राजा बेटा, वाह मेरा बेटा, ऐसे करके आपको तैयार किया, और फिर क्या किया, यहां बाद बगल में अपने बाजू में यहां बिठा के खूब प्यार किया, खूब प्यार किया, वाह, और फिर खड़ा करके पीठ ठोंका, कहा बेटा मेरा राजा बेटा, मेरे साथी, मेरे दोस्त, आज जाओ, तुम जाओ मेरी जगह पर, तुम जाओ, तुम्हें मेरा काम करना है, ध्यान रखना तुम्हें वो सब काम करने हैं जो मेरा काम है, और जैसे काम पूरा हो वैसे आ जाना, मैं जैसे बुलाऊं वैसे आ जाना, देर नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना नीचे जाके तुम अपने काम के लिए नहीं जा रहे हो, मेरे काम के लिए जा रहे हो, तुम मेरे दूत हो, मेरा काम करना। तो नीचे उतरे तो आपको यही अनुभव करना है, मैं भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं धर्म स्थापक हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं खुदा का नूर हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता अवतरित हुआ हूं। आपको ये लगे कि मैं उस लोक का हूं, इस लोक में आया हूं। और ऊपर से मास्क पहना है मैंने, मम्मी का मास्क पहना है, पिताजी का मास्क पहना है, बच्चों का मास्क पहना है, लेकिन अंदर में लगे मैं तो अंदर फरिश्ता हूं, मैं तो आया हूं। बच्चे समझ नहीं रहे, बच्चे मम्मी मम्मी कर रहे हैं, इनको तो पता नहीं मम्मी की तो मम्मी बन गई रात को ही, मेरा तो नया जीवन बना है, नया जीवन मिला है, नई दिनचर्या का, नए दिनचर्या का नए रंग के साथ, नई खुशी के साथ, नए उमंग के साथ अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करें। ठीक है, अब सब यहां से जाने के बाद ये महसूस ना करो मैं फिर आ गई, मधुबन बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर झंझट में आ गई, फिर वहीं आ गई, फिर दुनिया में आ गई, फिर वही समस्याएं, फिर वही बातें। आमूल चूल परिवर्तन करें, अपने वृत्ति का, अपने एटीट्यूड का, अपने दृष्टिकोण का, आउटलुक को बदल दे, है ना। सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों के बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों का रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, कश्तियों का रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। सोच को बदलें, अपनी सोच को ऊंचाइयां दें, सोच को ऊंचाइयां दें, साधारण सोच समाप्त। अब ऑफिस का, घर को, सबको एक नए दृष्टि से देखें और देखें कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद ये जो दिनचर्या है आपको बहुत उमंग उत्साह में लाएगी सवेरे का। दूसरा, जो सवेरे विघ्न पड़ता है वो सबसे बड़ा विघ्न पड़ता है कौन सा, अमृत वेले विघ्न पड़ता है कौन सा, नींद का, आलस्य और अलबेलेपन का, सभी कह रहे हैं, सब जानते हैं, मैंने देखा है। लेकिन आपको आज से संकल्प करना है, योग माना नींद नहीं। कोई बुजुर्ग हैं, बड़े भाई बहने हैं, रात को नींद नहीं है, कोई भी बात नहीं, आप उनको मत देखिए, स्वयं को देखिए कि सारी दिनचर्या में मैं कितना याद करता हूं, और उसमें भी अमृत वेला जब बैठा हूं तो अभी भी याद नहीं करूंगा तो जन्म जन्मांतर के विकर्म कब विनाश होंगे। यदि अपने शक्तिशाली संकल्पों से नहीं दूंगा तो विनाशकारी कैसे प्रेरित होंगे विनाश के लिए। यदि मेरा याद का चार्ट अच्छा न रहा, शक्तिशाली योग न किया, तो यहां पर जो भयानक वातावरण होगा उसको परिवर्तन कौन करेगा, फिर उसकी सफाई कौन करेगा, फिर नई दुनिया में योग बल से जन्म कैसे हम देंगे। उसके लिए तो योग बल चाहिए। जिसका याद का चार्ट 8 घंटे से कम है वो अंत के समय के लिए सुरक्षित नहीं है, ये बाबा के महावाक्य है। इसलिए हम सबको दिनचर्या में कर्म योग करते उठते बैठते, चाहे साकारी याद हो, चाहे आकारी याद हो, चाहे निराकारी याद हो, सेवा करते भी मनसा सेवा भी करें, स्व सेवा करें, यज्ञ सेवा करें, विश्व सेवा करें और मनसा सेवा भी करें, ये सेवाएं करते हुए हम निरंतर योगी बने। निरंतर योगी वो है जो निरंतर सहयोगी है, निरंतर योगी वो है जो निरंतर स्मृतिधारी है, निरंतर योगी वो है जो निरंतर सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करता है, निरंतर योगी वो है जो सबका स्नेही है, वो निरंतर योगी है। तो निरंतर योग की ओर आगे बढ़े, अपने लिए थोड़ा थोड़ा टिप्स बना लें कि मुझे कैसे कैसे योग करना है। मैंने पिछली बार भी बताया था, मैंने अपने पुरुषार्थ के लिए अलग अलग उपाय बनाए, ढेर सारी युक्तियां बनाया है, उन युक्तियों से करता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको लास्ट में 5 स्वरूपों का अभ्यास कैसे करें, बड़ा सरल उपाय है, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था यहां पर, आपको फिर बताऊंगा, इस चीज को आप जरूर नोट करें। दिन के दिनचर्या में कई बार याद कैसे करें, घर है, घर से जब आप निकलते हैं, दहलीज है जहां से निकलते हैं आप बाहर दरवाजे के पास, वहां एक स्टिकर लगा दें, निकलते कहें बाबा आप संभालिए घर, अब मैं चली। जैसे आप घर से निकलते हैं, बाबा के कमरे से या मधुबन से निकलते हैं तो विदा लेते हैं, फिर पहुंचते हैं, फिर बाबा को मिलते हैं, ऐसे करके दिनचर्या में घड़ी घड़ी कहां कहां बाबा को कैसे याद करना है उस दृष्टि को बढ़ाएं। तो सवेरे सवेरे जो सबसे बड़ा जो विघ्न पड़ता है वो निद्रा का पड़ता है, और आज से हमें निद्रा मुक्त योग करना है, निद्रा युक्त नहीं। तो सबसे पहले टिप्स, जब आप बैठें तो उसका आधार कैसे बैठें, आप बैठें जरा, तो ये देखिए हमारी बैठक, पांव को पांव पे जिसे बाबा रखता है, जो बैठ सके, जो हमारे नौ युवक भाई बहने ऐसे जो बैठ सकते हैं बैठे, मैं आपको कष्ट नहीं देता हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये आसन पहला आसन ये है, ताकि स्वयं को भी तो पता लगे मैं योग करने बैठा हूं या नींद करने के लिए बैठा हूं, है ना, ये जागृत अवस्था। एकदम स्ट्रेट बैठे, और या ये हमारी मुद्रा है, याद की मुद्रा, ठीक है। इस मुद्रा के बैठने के बाद हाथ यहां रखें, ठीक है, और थोड़ा अपना शरीर सीधा रखें, रीढ़ रज्जू हमारी सीधी रहनी चाहिए, ओके, और चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ, ऐसे नहीं, थोड़ा भी आपने आलस्य की मुद्रा बनाई तो निद्रा लोक में जरूर चले जाएंगे, ऊपर जाने के बजाय नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करें, थोड़ा ऐसे करें, सामने बाबा को देखें और थोड़ा चेहरे पर उस डुप्लीकेट ही सही थोड़ा मुस्कुराइए, तो जरा मुस्कुराए सब कोई, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये ईश्वरीय मिलन की शुरुआत है ना। हाँ, बैठे, किसको देख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन मिलने के लिए आया है, किससे मुझे आज वरदान लेने हैं, किसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, किसने मुझे अपना कहा है, किसने मुझे अपना बनाया है, अनुभव करें, उसके प्यार में समा जाए, देखें। और जब नींद आए इस समय पर भी ऐसे बैठे, देखें, मुस्कुराए, और बाबा को कुछ मिनट के लिए, एक मिनट तक अपलक देखें, ये अपलक दृष्टि माना पलक बिना झपकाए हुए। जिनको भी नींद आती है, योग में अक्सर करके लाल लाइट हुई, बहुतों को नींद का नशा आ जाता है, लेकिन बैठे तो सामने देखें बाबा को, एक मिनट तक, दो मिनट तक अपलक देखिए बाबा को, ध्यान से, गौर से, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, देखें, मुस्कुराते हुए, निर्निमेश दृष्टि से। निर्निमेश कहते हैं पलक न झपकना। यही डायमंड हॉल में मैं बैठा था पीछे, और वही देख रहा था, ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए, गगन झुक गया वक्त भी ठहरा ठहरा, गगन झुक गया हैं, और वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है, सुहाना समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई है, हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए हैं, ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से अपनी दिनचर्या का आरंभ करें, जिनको भी नींद की शिकायत होती है प्रयोग करें, और अपने आप से वार्तालाप करें, नींद आने वालों को, एक मां का जवान बेटा अगर शरीर छोड़ देता है एक्सीडेंट में, मां के हफ्तों हफ्तों की नींद कहां जाती है, क्यों जाती है, फिर मुझे क्यों नींद आती है, मेरा भी तो बाबा से प्यार है, लौकिक दुनिया में किसी का किसी से प्यार हो जाता है, आपस में लोगों की रातों की नींद खत्म हो जाती है, तारे गिनते हैं एक दूसरे के प्यार में, हमारा भी तो बाबा से प्यार है, हमारी हमको नींद क्यों आती प्यार में, हम कहें बाबा मुझे आपसे बड़ा प्यार है, और जब याद करने बैठते हैं तो झुटका खा रहे, ये कौन सी प्रीत की रीत है, जब दुश्मनी होती है किसी से तो रातों को नींद नहीं आती, पता नहीं दुश्मन कब आ जाएगा, और माया तो दुश्मन चारों ओर हमारी तरफ है, फिर मुझे नींद क्यों करना है, सीमा पर सरहद पर कब सुसाइडर कब बम्बार्डर आ जाएं और कब विस्फोट कर दें, लोग देखते हैं अंधेरों में भी देखते हैं, दूरबीन से देखते रहते हैं कोई दुश्मन आ ना जाए, चौकसी। प्यारे साथियों, सजग प्रहरी बने अपने आप के, चैतन्य होकर के देखें, आलस चारों तरफ माया देखती है, और जैसे आप ऐसे करते हैं ना, तो वो जो जो बाबा से तार जुटी होती है ना वो टाइट हो जाता है, तो माया कैंची लिए होती है वो ऐसे कट कर देती है कि कनेक्शन काट देंगे तो जो सप्लाई है वो सप्लाई बंद हो जाएगी तो हो जाएगा। सवेरे सवेरे माया निद्रा के रूप में आती है क्योंकि उसको मालूम है कि ये जन्मे जय का यज्ञ कर रहे हैं, महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, अगर इस समय पर ये सफल हो गए तो मैं दिन भर में कुछ भी करूंगी तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है, माया जानती है। इसलिए सवेरे सवेरे निद्रा के रूप में आपके पास आती है और आप जब बैठे तो यही सोचे कि मैं यज्ञ रच रहा हूं। इस समय कितनी आवाजें आ रही हैं, भक्तों की पुकारें आ रही हैं, कितने दुखियों की चीत्कारें आ रही हैं, बाबा बुला रहा है बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ। दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक ना आई, क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई, अब कुछ तरस तो खाओ उनको दरस दिखाओ, अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हरिक निभाया, मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, अब देर न लगाओ आओ वतन सजाओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक, अब देर न लगाओ आओ वतन सजाओ, तुम मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। साथियों सवेरे की दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत वेले को शक्तिशाली करें, दिन भर भी अटेंशन रखें। ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं, कोई कोई कहते भी हैं कि अमृत वेला के बाद सोना नहीं चाहिए, बड़ा पाप है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये नहीं कि सोना बड़ा पाप है और आप जागते रहो, नींद करते रहो, योग में भी नींद करते रहो, मुरली में भी, वो ठीक नहीं। इसलिए अगर 5 मिनट का रिलैक्सेशन होता है योग के बाद तो 5 मिनट के रिलैक्सेशन कोई पाप नहीं होता है, उससे आपकी दिनचर्या अच्छी ही हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है कि रेस्ट नहीं करना है, इस शरीर को संभालना भी है, शरीर को चलाना भी है, संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया, इसलिए बैलेंस कीजिए। अगर 5-10 मिनट अमृत वेले को आपने योग किया, अच्छी तरह से योग किया, मुरली में जाने से पहले यदि आपने एक्सरसाइज किया, वॉक किया, सब कुछ किया, आपको आलस लग रहा है, अमृत वेला भी करना है, मुरली भी ध्यान सुनना है, तो 5-10 मिनट के रिलैक्सेशन से कोई पाप नहीं होता है। लेकिन वो बात गलत है कि सो जाते हैं 1 घंटा के लिए 2 घंटे के लिए और रेगुलर आपने नियम बना लिया, वो बात गलत है, ठीक है ना। बैलेंस देखना बहुत जरूरी है। मैं भी शाम को सुन रहा था तो ये जो कहा जाता है कि नहीं सोना बर्द, कई कई होते हैं सो जाते हैं तो उल्टे पुलटे सपने भी आते हैं, इसलिए बैलेंस रखना शरीर को। लेकिन ये सोचना कि मैं तो दवाई खाता हूं ना भैया, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, बुजुर्ग होने पे ऐसा भी होता है, बुजुर्गों की बड़ी सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब वो जागने के लिए बैठते हैं तो नींद आती है, और जब नींद करने जाते हैं तो जागते ही रहते हैं। बुढ़ापे में तो बड़ा गजब का है, बुढ़ापे के लिए कहते हैं बुढ़ापा भी गजब का है, बड़ी मुश्किल से कटता है, ना हम बिस्तर से उठते हैं ना बिस्तर हमसे उठता है, लेकिन हम सब कोई बुजुर्ग नहीं है। हमारी दादी कभी अपने आप को बुजुर्ग नहीं कहती है, 103 वर्ष की दादी, हम सब युवा हैं, एक वानप्रस्थी भी हैं, तो हम सब युवा हैं, हम में से कोई भी एक समझे ही नहीं कि हम बुजुर्ग हैं, हम रिटायर हैं। रिटायर कहना ही नहीं चाहिए, रिटायर कहने के बाद ये कहना चाहिए रिचार्ज हो गया हूं, क्या कहेंगे, रिचार्ज हो गया हूं, ठीक है ना। आप सब रिचार्ज हो गए एकदम, बधाई आपको। एक शुभ संकल्प के साथ आप अपनी दिनचर्या का आरंभ करें, निद्रा मुक्त स्थिति, और दिन की दिनचर्या में और भी टिप्स बना लें और याद में बैठें। हम सब बैठते हैं अभी याद में, आप 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें मेरे साथ जैसा मैं करता रहता हूं। पहले 5 बार भी बड़ा मुश्किल हो गया था, अब 50 बार कर लेता हूं, बड़ी अच्छी युक्ति है, जैसे मैं कहूं एक्शन वैसे करना। आप भी चलिए बैठ जाएं और इस तरह से सभा का समापन करते हैं। मैं ज्योति सितारा, बोलिए, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, उड़िए, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।